डालेंगे तीन बार हरी बोल करेंगे हरी बोल
हरी बोल
हरी बोल
हरी बोल
हरी बोल
So today is October 8th, 2018 in Delhi, India, and we're going to be looking at Krishna's qualities. This is from the Nectar of Devotion.
आज कृष्ण की गुणों के ऊपर चर्चा की जाएगी भक्ति रसामृत सिंधु से.
We'll see how much we'll do tonight. I have three levels of looking at Krishna's qualities. We'll see how the time goes.
तो देखते हैं कितना समय तक हम इसको ले सकते हैं. ये तीन स्तर पे चर्चा की जाएगी.
So why should we study Krishna's qualities?
तो हमें कृष्ण के गुणों को समझना क्यों चाहिए?
So Krishna explains that someone who knows the transcendental nature of his appearance does not take birth again.
तो क्योंकि कृष्ण कहते हैं जो उनके जन्म के दिव्य स्वभाव को समझेगा वो दोबारा जन्म नहीं लेगा.
जन्म कर्म च नहीं जीव्यम एवं यथा तत्पदेहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन. That as long as we become absorbed in Krishna, we lose our material attachments.
जब हम अपने मन को कृष्ण में लगाएंगे, तो हमारे भौतिक आसक्तियां चली जाएंगी.
But also because it is so much fun.
लेकिन इसमें बहुत आनंद भी है.
Much chitama kata pranam bodhiyantas prasparam katayantas chumanijam tushanti cha ramanti cha. That the devotees find great satisfaction and great happiness talking about Krishna.
भक्त लोग बहुत संतुष्ट होते हैं और बहुत आनंद पाते हैं कृष्ण के बारे में बोलते और सुनते हुए.
So how are we going to understand Krishna's qualities?
तो हम कैसे समझेंगे कृष्ण के गुणों को?
So any intelligent person can understand there must be a God.
कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति समझ सकता है अवश्य भगवान का अस्तित्व है.
Just like, let's see, something very simple. So this curtain, this is pretty simple.
तो ये पर्दा बड़ा सरल सा है.
But somebody intelligent had to make it.
किसी बुद्धिमान ने तो इसे बनाया है.
It couldn't be made by a one-year-old child or a monkey.
किसी बंदर ने या एक साल के बच्चे ने तो नहीं बनाया होगा.
And what to speak of the flowers?
फूलों की क्या बात करें?
So it's so much more complicated than the curtain.
और पर्दे से ज़्यादा जटिल है ये फूल.
But what are we going to know of the nature of God?
तो हम भगवान के स्वभाव के बारे में क्या जाने?
We can understand something by looking at the world.
हम इस संसार को देखकर ही कुछ समझ पाएंगे.
But we're not going to understand that much about God personally.
लेकिन हम व्यक्तिगत रूप से भगवान को उतना नहीं समझ पाएंगे.
For that we have to look in the revealed scriptures.
तो वो समझने के लिए शास्त्रों को देखना होगा.
And to hear from the saintly persons.
साधुओं से सुनना होगा.
And of course there's our own personal revelation from Krishna.
और फिर कृष्ण व्यक्तिगत साक्षात्कार भी देते हैं.
That comes from offenseless chanting.
और वो मेरा प्राण जब से आता है.
And absorption in all of the activities of bhakti.
और भक्ति में अपने मन को लगाने से आता है.
So what are the general revelations that are given by Rupa Goswami?
तो रूप गोस्वामी जी के द्वारा सामान्य साक्षात्कार क्या दिया गया है?
First of all, that God is a person.
उन्होंने कहा है भगवान एक व्यक्ति हैं.
And that's also reasonable.
ये भी समझना ठीक है.
Janmayasya, everything must come from God, and we are all people.
हम भी एक व्यक्ति हैं और सब कुछ भगवान से आया है.
How could we all be individuals if God was impersonal?
अगर भगवान निराकार हैं, तो फिर हम कैसे व्यक्तित्व रख सकते हैं?
And because we've all come from Krishna, we can understand something of his qualities by looking at our qualities.
क्योंकि हम कृष्ण से आए हैं, तो हम कृष्ण के गुणों को कुछ समझ सकते हैं अपने गुणों को देखते हुए.
But unfortunately, our qualities are reflected in the material world in a way that's not so nice.
हमारे दुर्भाग्यवश हमारे गुण प्रतिबिंबित होते हैं इस भौतिक जगत में जो कि इतना अच्छा नहीं है.
I mean, we may say, well, we have very wonderful qualities.
हम कह सकते हैं कि हमारे पास बड़े अद्भुत गुण हैं.
But the problem is that when we're self-centered, in one sense, we don't really have any wonderful qualities at all.
लेकिन एक दृष्टि से जब हम बड़े स्वार्थी होते हैं, तब हमारे अंदर कोई गुण नहीं होता.
It's such as stated in the Bhagavatam.
ये ऐसा भागवता में बताया है.
That materialistic people have no good qualities.
भौतिकतावादी लोगों में कोई गुण नहीं होता.
Now for a long time, I found that very hard to understand.
लंबे समय तक मुझे ये समझने में बड़ा कठिनाई थी.
Have you all heard that verse from the Bhagavatam?
क्या आपने इस श्लोक को भागवतम से सुना है?
Who has heard that verse?
किसने सुना है?
Only one of you. No one else has heard that from the Bhagavatam?
किसी ने पहले नहीं सुना भागवतम?
That the non-devotees have no good qualities?
क्या भक्तों में कोई गुण नहीं होते?
Who has heard that?
किसने सुना है?
Only a few. So this is for most of you the first time you are hearing this?
क्या आप सभी से पहली बार सुन रहे हो?
Who is hearing this for the first time?
कौन पहली बार सुन रहे हैं?
You are raising your hand for both.
Inspiring them.
He's confused.
I'm inspiring them.
You're inspiring them.
By seeing me.
So now maybe I've told you something shocking. Now maybe I have told you something very shocking. Because when I heard that from the Bhagavatam, I thought, I don't think that's true.
तब मैंने ये सोचा ये शायद सच नहीं है.
I've met so many non-devotees. They have so many good qualities.
मैं तो कई भक्तों से मिली हूँ जिनमें बड़े कई गुण हैं.
So why is Bhagavatam saying no good qualities?
तो भागवतम ऐसा क्यों कह रहा है कि उसमें कोई गुण नहीं है?
So because most of you have never even heard this verse.
क्योंकि आपने में से अधिकतर लोगों ने तो ये श्लोक पहले सुना नहीं है.
I guess you never wondered about it.
क्योंकि आपने इस बारे में आश्चर्य भी नहीं किया होगा.
So I was going to solve the mystery for you.
तो रहस्य खोलने जा रहे हैं.
But you never even asked the question.
लेकिन आपने तो कभी ये प्रश्न भी नहीं किया.
Well, you'll be prepared next time you do hear the verse.
जब आप अगली बार ये श्लोक सुने तो तैयार रहना.
And someone says, Bhagavatam says that materialists have no good qualities.
जब कोई कहे कि भागवतम कहता है कि भौतिकतावादी लोगों में कोई गुण नहीं होता.
You'll say, oh, I understand that.
तब आप कहेंगे हाँ मैं समझ रहा हूँ.
So I'd like us to think about, well, first I'll ask this question. Who here is absolutely 100% honest?
कौन है यहाँ पे जो 100% ईमानदार है?
So let's think about what are the circumstances under which we are dishonest.
तो सोचते हैं उन परिस्थितियों को जिसमें हम बेईमान हो जाते हैं.
And we'll see there's always some kind of fear.
तो हम कुछ भय देखते हैं उसमें.
I'm afraid I won't get something.
हमें डर लगता है हमें कुछ मिलेगा नहीं.
Or I'll lose something.
कुछ खो देंगे हम.
I'll hurt somebody.
और किसी को नुकसान देंगे.
And then we're not honest.
तब हम बेईमान होंगे.
Now, if a person doesn't have very much fear,
जब व्यक्ति में भय नहीं होगा,
then they'll be honest in a lot of circumstances.
तब वो कई परिस्थितियों में ईमानदार रहेगा.
Or think about being kind.
और उसमें दया भी होगी.
I think we're generally kind.
हो सकता है हम सामान्यतः दयावान हों.
But always?
क्या हम हमेशा दया दिखाते हैं?
So again, we can ask the question, when are we unkind?
तो हमें ये प्रश्न फिर करना होगा, कब हमें दया नहीं होती?
And I'd like you to notice.
और मैं चाहती हूँ आप इस बात को देखें.
In the next week or so, pay attention.
अपने ऊपर अगले सप्ताह तक थोड़ा ध्यान दें.
Under what circumstances do we become dishonest or unkind?
किन परिस्थितियों में हम बेईमान और दया नहीं रखते?
Or any other qualities that we don't really want to have?
और कोई ऐसा अवगुण जो हम नहीं चाहते हमें हो?
And you'll see that it always has to do with fear.
आप देखेंगे कि वो हमेशा भय से जुड़ा हुआ पाया जाएगा.
And that fear has to do with our sense of self.
तो वो जो भय है वो हमारे स्वयं से लेकर है.
I'm thinking if I behave properly in this situation.
हम सोचते हैं कि अगर इस परिस्थिति में मैं ठीक से व्यवहार करूं.
There'll be some danger to my identity.
हो सकता है मेरी पहचान में कोई खतरा आ जाए.
I'll be threatened in some way.
मुझे कुछ धमकाया जाए.
So you can see that the lack of good qualities has to do with a false identity.
तो आप देखेंगे कि जो गुणों का अभाव है वो हमारी पहचान से संबंधित है.
Now when someone's in the mode of ignorance, they have a lot of fear.
तमोगुण में तो बहुत भय रहता है.
And they have a lot of false identification.
उसमें बहुत मिथ्या पहचान भी रहती है.
In the mode of passion, a little less.
रजोगुण में थोड़ा कम हो जाएगा.
And in the mode of goodness, a little less.
और सत्वगुण में और भी कम हो जाएगा.
So the higher you are in the modes,
तो जैसे आप इन गुणों में ऊंचा उठेंगे,
the more difficult it is to feel afraid.
और उसमें और कठिन होगा भयभीत होना.
And therefore, you will have good qualities in more and more circumstances.
और इन परिस्थितियों में आप में और गुण आते जाएंगे.
Does everyone understand? Does this make sense to everyone?
क्या ये कुछ समझ आ रही है ना?
But there'll be some level at which the good qualities go away.
लेकिन एक स्तर ऐसा आएगा कि सारे गुण चले जाएंगे.
Maybe nothing bothers you for 3 years.
हो सकता है 3 साल तक आपको कोई परेशानी ना हो.
And you think, oh, I am free from anger.
आपको लगे मैं तो क्रोध से मुक्त हो गया.
And then something is threatening.
और फिर कुछ ऐसा आएगा जिससे हम भयभीत होंगे.
And you become angry.
और फिर हम क्रोधित हो जाएंगे.
So therefore, as long as we have a material identity,
तो जब तक हमारी भौतिक पहचान होगी,
and we are afraid of threats to that material identity,
और उस भौतिक पहचान पे जब खतरा आएगा,
what we really have is a desire for self-preservation.
और हम सब में अपने आप को बनाए रखने की इच्छा है.
And our good qualities are provisional or conditional.
तो जो हमारे अच्छे गुण हैं, वो उसको बचाने में सहायता देते हैं.
So for someone who's fully in their spiritual identity,
जब कोई अपनी आध्यात्मिक पहचान में स्थित हो,
they become free from fear.
वो भय से मुक्त हो जाते हैं.
And their good qualities are always manifest in all circumstances.
उनके गुण हमेशा प्रकट होते हैं हर परिस्थिति के अंदर.
And of course that is true for Krishna.
और ये कृष्ण के लिए भी उतना ही सत्य है.
Therefore Krishna never shows any bad qualities at all.
कृष्ण कभी भी अपना कोई अवगुण नहीं दिखाते किसी भी स्थिति में.
His qualities are therefore on a completely different level than what we're experiencing in this world.
कृष्ण के जो गुण हैं वो बिल्कुल अलग स्तर पे हैं जो हम अनुभव करते हैं इस संसार में उससे बिल्कुल अलग.
And that's why Krishna says janma karma chame divyam, that his activities are transcendental.
इसलिए कृष्ण कहते हैं कि उनके क्रियाकलाप दिव्य हैं.
And when someone understands this, just understanding this, oneself also comes to the transcendental platform.
इसे समझने मात्र से एक व्यक्ति उस दिव्य स्तर पे आ जाएगा.
So first let's look at the 6 opulences of the Lord.
तो अब हम भगवान के 6 ऐश्वर्य को देखेंगे.
Now these opulences are really forms of prosperity or wealth.
ये जो 6 ऐश्वर्य हैं जिसमें समृद्धि.
They are like 6 manifestations of Lakshmi Devi.
तो ये 6 प्रभाव हैं लक्ष्मी देवी के.
Now these 6 are important to understand for our own life also.
इन 6 को समझना हमारे निजी जीवन के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है.
Because many times we think of being wealthy only in terms of money.
क्योंकि हम अधिकतर अपने आप को धनी पैसे के संबंध में ही देखते हैं.
But actually there are 6 ways of being wealthy.
लेकिन 6 तरीकों से आप धनी हो सकते हैं.
Now Krishna has all of these perfectly.
कृष्ण में ये सब बड़े पूर्ण रूपेण हैं.
And what's really wonderful,
और ये बड़े अद्भुत भी हैं,
is that when we serve Krishna nicely,
जब हम कृष्ण की सेवा अच्छे से करते हैं,
when we make him happy,
जब हम उन्हें प्रसन्न करते हैं,
or even if we just try to make him happy,
और सिर्फ प्रयास करते हैं उनको प्रसन्न करने का,
then we're bringing together Radha and Krishna.
और जब हम राधा कृष्ण को एक साथ लाते हैं,
because Radha Rani is his pleasure energy,
क्योंकि श्रीमती राधा रानी उनकी आनंद देने वाली शक्ति है,
so if I'm trying to please Krishna, that means I'm bringing him with his energy of pleasure.
तो जब हम कृष्ण को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, तो इसका मतलब है हम उनकी आनंद देने वाली शक्ति को उनके साथ ला रहे हैं.
Or if I'm bringing together Lakshmi and Narayan,
और जब हम लक्ष्मी नारायण को साथ लाते हैं,
or Sita Ram,
और सीता राम को साथ लाते हैं,
then I also get to experience that prosperity.
तब हमें भी समृद्धि का अनुभव होगा.
And then even if I don't have a lot of cash in my life,
तब हमारे पास चाहे अधिक धन ना भी हो,
I will feel very wealthy.
हमें अपने आप को धनी समझेंगे.
So we are going to look at these six forms of prosperity or wealth that Krishna has.
तो छह तरीके जिनसे हम समृद्ध हो सकते हैं और ये गुण कृष्ण में पाए जाते हैं.
And he has them to an unlimited degree.
और कृष्ण में असीमित मात्रा में पाए जाते हैं.
And only in a positive way.
और ये सिर्फ सकारात्मक रूप में पाए जाते हैं.
Does that taste good? So the first one we're going to look at in Sanskrit is called Shri.
तो हम पहला देखने जा रहे हैं जिसको हम श्री कहते हैं.
Now sometimes श्री is just translated as beauty.
कभी-कभी श्री को सिर्फ सुंदरता कहा जाता है.
But it means any kind of splendor.
और किसी भी प्रकार का वैभव.
It has to do with charismatic leadership.
और ये एक बड़े नेतृत्व का भी विषय है.
And beauty for any of the senses.
किसी भी इंद्रिय की सुंदरता.
Beautiful things to see, beautiful things to hear, beautiful things to taste.
सुंदर चीजों को देखना, सुनना, आस्वादन करना.
So when Krishna entered Mathura, his form was so beautiful.
जब कृष्ण मथुरा में प्रवेश किए तो उनका रूप इतना सुंदर था.
That people just stopped whatever they were doing to see him.
लोग रुक गए जो भी वो कर रहे थे कृष्ण को देखते ही.
You know, the ladies were getting dressed.
और जो भी स्त्रियां थीं वो श्रृंगार कर रही थीं.
And they just had in one earring.
और किसी ने एक कान में वाली पहना था.
Or just makeup on one eye.
और उन्होंने एक ही आंख को भी सजाया था.
And they just rushed to the balcony to see.
वो अपने घर से बाहर कृष्ण को देखने के लिए दौड़ आए.
And they were just looking at his beauty.
और वो कृष्ण की सुंदरता को देख रहे थे.
As if they were drinking him through their eyes.
ऐसा कि जैसे उनका उनको पी रहे हो अपनी आंख से.
And every time Krishna in any form appears, we see this happen.
और किसी भी रूप में कृष्ण जब आते हैं तो ऐसा होता है.
When Vamandev appears in Bali's sacrifice.
जब वामनदेव बलि महाराज की यज्ञशाला में आए.
Everybody was just looking.
और सब उनको देखते रह गए.
Who is that person who's so beautiful?
ये व्यक्ति कौन है जो इतना सुंदर है?
I mean, sometimes in this world we see beautiful people.
कभी-कभी इस संसार में भी हमें सुंदर लोग दिखाई देते हैं.
But not to that extent.
लेकिन उस स्तर तक नहीं.
And then, of course, Krishna took a very interesting form once in the story of Kurma Avatar.
और एक बार कृष्ण बड़ा रुचिकर अवतार लिया कुर्मा अवतार के रूप में.
As Mohini Murti.
मोहिनी मूर्ति.
So this is a very interesting incarnation.
ये बहुत ही रुचिकर अवतार है.
So you all know this story?
क्या आपको ये कथा पता है?
Who knows the story of Mohini Murti and Kurma?
किसको पता है मोहिनी मूर्ति और कुर्मा अवतार की कथा?
Most people do not know.
अधिकतर लोगों नहीं पता है.
Okay. So the demigods were always in trouble that the demons were taking their kingdom.
तो देवी देवता हमेशा डरे थे कि जो असुर उनका राज्य ले लेंगे.
So Lord Vishnu says, you know what you should do is ask the demons to cooperate with you.
तो विष्णु जी ने कहा कि असुरों को बोलो वो आपसे सहयोग करें.
Pretend to be their friends.
और उनको अपना मित्र होने का स्वाद करो.
And say, let's combine together to get nectar out of the milk ocean.
और उनको बोलो चलो इकट्ठे मिलकर इस शिव सागर से अमृत निकालते हैं.
So the demigods and the demons were churning the ocean of milk.
और देवता और असुर मिल के मंथन कर रहे हैं समुद्र का.
And this is a very long story.
ये बड़ी लंबी कथा है.
Which we're not going to tell the whole story.
पूरी कथा तो नहीं सुना पाएंगे.
But anyway, when they were churning the milk,
जब मंथन कर रहे थे दूध का,
Dhanvantari came out with a pot of nectar.
और उस समय धनवंतरि बाहर आए अमृत का पात्र लेके.
Yes, which can make you live for a very, very long, healthy life.
जिससे आप स्वस्थ लंबा जीवन जी सकते हैं.
And have great strength.
उसमें बहुत शक्ति भी होगी.
So immediately the demons grabbed the pot of nectar.
और उसी समय तुरंत असुरों ने उसको छीन लिया.
So this was a problem.
और ये समस्या थी.
Because Vishnu had intended for the demigods to get the nectar.
और विष्णु ने तो ये देवताओं के लिए निकलवाया था.
So he comes as a beautiful woman.
और वो एक सुंदर स्त्री का रूप लेकर आ गए.
And the demons were so enchanted.
और जो असुर थे वो तो मोहित हो गए.
They're just looking at her.
और वो उनको देखते रह जा रहे थे.
Who are you?
आप हैं कौन?
And she says, you shouldn't trust me.
और उन्होंने कहा मुझ पे विश्वास मत करो.
He said, we trust you.
लेकिन उन्होंने कहा हम विश्वास करते हैं.
Actually, there's many experiments in psychology.
मनोविज्ञान में कई प्रयोग किए जाते हैं.
That if you're more beautiful, people will trust you more.
अगर आप सुंदर होंगे तो आप पे जो लोग ज्यादा विश्वास करेंगे.
More attractive people get better jobs. They get paid more money.
जो आकर्षक लोग होते हैं उनको अच्छा नौकरी मिलता है, ज्यादा पैसा भी मिलता है.
People are more likely to help them.
उनको ज्यादा सहायता भी मिलती है.
People are more likely to trust them.
उनको ज्यादा विश्वास किया जाता है.
So imagine when it's God.
और आप सोचिए जब ये भगवान होंगे.
He said, you do whatever you want.
तो उन्होंने कहा ठीक है, जो आप करना चाहो करो.
We trust you completely.
तो उन्होंने असुरों ने कहा हम तो आपको पूरा विश्वास करेंगे.
It's difficult for us to say that to Krishna, isn't it?
हमारे लिए कृष्ण को ये कहना बहुत मुश्किल है.
Krishna says, Sarvadharma Pritcha Jama Mekam Sharanam Raja. We're like, I don't know if I want to surrender everything.
तो कृष्ण हमें पूर्ण शरणागति बोलते हैं, लेकिन हमें लगता है शायद करें या ना करें.
I'm not sure if I trust you.
हमें लगता है हम कृष्ण पे कैसे पूरा विश्वास करें.
But these were the demons.
लेकिन ये तो असुर बोल रहे हैं.
They said we trust you.
उन्होंने कहा हम आप पे पूरा विश्वास करते हैं.
And then the Lord tricked them.
और फिर भगवान ने उनको धोखा दिया.
So Mohini Murti said, you sit over there.
मोहिनी मूर्ति का वहाँ बैठ जाओ.
And then she gave the nectar to the demigods.
और फिर अमृत असुरों को दे दिया.
But Rahu discovered her.
और राहु ने तो देख लिया.
And so she manifested her Sudarshan chakra.
और फिर भगवान ने अपना विष्णु सुदर्शन चक्र निकाला.
She cut off Rahu's head.
और राहु का सर काट दिया.
And then the demons could understand. Wait a minute, this is Vishnu.
और फिर तो असुर समझ गए कि ये तो विष्णु निकला.
And then there was a big fight, which of course the Lord won. We find in the pastimes of Lord Chaitanya, he took sannyas when he was only 24 years old. And he came to Jagannath Puri. So Sarvabhauma Bhattacharya was a very elderly pandit. He was the advisor to the king. And Lord Chaitanya ended up taking shelter at his home. And Sarvabhauma Bhattacharya said to him, you are very young to take
sannyas.
And you are very beautiful.
It
may be difficult for you
to
maintain your sannyas. So many women will be attracted to you because you are so beautiful. So what are you going to do?
He
says, ah, the solution is that you study the Vedanta. And that way you'll become fixed in philosophy. So that's another story. But the point is that he saw that Lord Chaitanya was so extraordinarily beautiful. So we're very fortunate if we can have this opulence in our life. If we can have a beautiful home with attractive artwork or music or anything that's splendorous in our life. So Krishna has another opulence in full. And this is virya. Virya means strength.
इसको शक्ति कहते हैं.
So it means not only physical strength.
इसका अर्थ सिर्फ शारीरिक बल नहीं है.
It means the power to control your senses.
इसका मतलब अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना भी है.
It means the power of knowledge.
इसका मतलब ज्ञान का बल भी है.
It means like having a powerful intelligence.
इसका मतलब शक्तिशाली बुद्धि भी है.
It means having a lot of ability. And it means even having a potency for love. So when did Krishna show how strong he is? Can anybody suggest?
What's one of Krishna's leelas where he shows how strong he is?
कौन सी लीला में कृष्ण ने दिखाया कि वो बलशाली है?
And he's lifting with one finger.
एक उंगली से उठा लिया.
I don't know. Can I do two of them? What do you think?
Can you do two of them?
Do you think you could lift the whole building? Any of you? Do you think you could lift the building?
क्या आप में से कोई building बना रहे?
So he lifted a mountain. Can you tell me another pastime of Krishna where he shows some extraordinary strength?
क्या कृष्ण की और कोई लीला बता सकते हैं जिसमें उन्होंने बड़ी शक्ति का प्रदर्शन किया?
Or any incarnation?
या किसी और अवतार?
Varaha, carrying the earth. Okay. Narasimha Dev. Okay. What about Ramchandra?
Ramchandra के बारे में क्या विचार है?
Where he breaks Shiva's bow, and how many people did it take to move that bow?
जब उन्होंने शिवजी के धनुष को तोड़ा, और कितने लोग लगते थे शिवजी का धनुष उठाने में?
I think there was like 1,000 people, yeah.
1,000 लोग.
And he just picks it up.
और बस ऐसे उठा लिया.
With his left hand.
बाएं हाथ से.
And it breaks.
और टूट गया.
And also we know that he's holding all the planets on his head.
और हम ये भी जानते हैं कि वो अपने सर पे सारे ग्रहों को उठाता है.
And he doesn't even feel it.
और वो अनुभव भी नहीं होता.
You know, just like a little. He doesn't even know it's there.
आपको पता नहीं चलेगा ये सर पे है.
The whole planet.
पूरा ग्रह.
So we see some of these construction workers, they're carrying all these bricks on their head, right?
तो हम मजदूरों को देखते हैं, वो कितना मल उठाते हैं बाहर.
But I'm sure they feel it.
और मुझे लगता है उनको अनुभव होता होगा.
And that's just a little bit of earth.
और ये तो सिर्फ कुछ अंश है पृथ्वी का.
Oh, Krishna kills so many demons.
और कृष्ण कितने सारे असुरों को भी मारते हैं.
Even when he's a little boy.
जब वो छोटे एक लड़के थे.
How old are you?
कितने बड़े हो? 10 years.
10 years. Do you think you could kill a big monster? No. Ah. What about you? How old are you? How old are you? You don't know? He's too young to know. Okay. And how old are you?
9. 9.
Could you kill monsters? You have to think about it. Maybe. If they were small monsters. So Krishna was killing so many demons even when he was very young. So this is also a wonderful opulence to have in our life. This is the opulence of good health.
और ये है अच्छा स्वास्थ्य.
A physical ability, mental ability.
शारीरिक मानसिक योग्यताएं.
So Krishna's next opulence is intelligence or wisdom.
कृष्ण की अगली ऐश्वर्य है बुद्धि.
Now, of course, he knows everything.
हालांकि वो सब कुछ जानते हैं.
You know, most of us know a little bit about a little bit.
हम थोड़े से ना थोड़ा ज्ञान रखते हैं.
And the more educated you are, you know more and more about less and less.
और जितने पढ़े लिखे होंगे उतना कम से कम जानोगे.
But Krishna knows everything about everything.
कृष्ण तो सब चीज के बारे में सब कुछ जानते हैं.
He not only knows all information.
वो सारे जानकारी ही नहीं रखते.
But he knows what is ethical.
वो ये भी जानते हैं कि अच्छा क्या है.
He gives us intelligence.
हमें बुद्धि देते हैं.
What is the verse in the Bhagavad Gita where it says Krishna gives us intelligence?
कौन सा श्लोक है गीता में जब कृष्ण कहते हैं कि कृष्ण हमें बुद्धि देते हैं?
पंचतंत्र. Let's say this together, everyone who knows this.
Tesham satata yutanam vajatam vritti purvakam tadami buddhi yogam tam yenamah. Okay, I want to know from somebody under the age of 12. So what Sanskrit word in that verse means intelligence?
Oh,
it's in Hindi, doesn't it? Oh well, now you know. Terrible, huh? As soon as we translated it. Alright, what's another verse? That was funny. What's another verse? This is easy. It's the brother verse. That Krishna gives us intelligence. Come on. Oh, that's a very nice one. Can we sing that one? Sarvasya chaham riddhi sannivisto matas matirgyanam apohanam cha vedasya sarvam aham eva vedyo vedantikrit vedavit eva chaham. Can anyone tell me what number that verse is in the Bhagavad Gita?
कोई बता सकता है श्लोक का संख्या क्या है गीता में?
15, yes.
15.
So in my family, whenever we lose something, we can't find our keys or something, we chant that verse.
मेरे परिवार में जब चीज कुछ मिलती नहीं हो जाती तो हम श्लोक बोलते हैं.
That's our finding things verse.
Yes,
you know? Oh no, I can't find my pencil. Chant 15. And then we go around the house. Sarvasya chaham riddhi sannivisto matas patityanam apohanam cha vedas disarvam. And then we find it. So recently I was in Italy. And one of the devotees couldn't find her phone. So I said, chant 15. So she, this is a true story. She went around her room saying, 15. So Krishna's giving us intelligence because he is the most intelligent. Now not only does he know everything, he's also very clever. Now Rupa Goswami defines clever as being able to do many things with one action.
और रूप गोस्वामी बताते हैं चतुरता का मतलब है एक ही कार्य से बहुत सारी चीजों को सिद्ध करते हैं।
Now sometimes we talk about multitasking.
और हम कई बार एक साथ कई काम करने की बात करते हैं।
But that usually means that you're just switching very fast between things.
पर उसका तो मतलब होता है जल्दी-जल्दी कुछ कर रहे हैं आप।
Like if you're cooking 5 different preparations.
जैसे आप 5 व्यंजन के सब बनाते हो।
And watching 5 children. But you're not really doing the same thing that Krishna's doing. He's doing one thing that accomplishes many things. That is the best way to be efficient. And also Krishna is defined by Rupa Goswami as having the qualities of being expert. And this means that if there's something very difficult to do, Krishna can do it very fast and very easily. Alright, so can we think of some examples of Krishna being very clever and expert? Any stories about Krishna where he was particularly clever and expert? Oh, thank you, Ashwatthama. That's such an amazing story. So Krishna tells Arjuna, kill him and don't kill him.
Krishna Arjun ko kehte hain maro aur nahi bhi maro.
We could talk about that story for a long time. How understanding dharma is not so simple. It's not like there's just a set of rules. Okay, what does it say in the rule book? Page 10, number 3. What do I do in this situation? It's going to be right here. Life is not really exactly like that. It's understanding subtleties. Okay, any other good example of Krishna's cleverness and expertise? Yeah, which pastime with Draupadi? With the Patra. Where he took a little bit of the rice. That one, I don't know Hindi, so I'm trying to guess from the words I can understand. What is he saying?
Draupadi went to take blessings from Bhishma.
I'm not sure I know that.
Bhishma said, I'll kill all the five Pandavas.
Oh, when he had the five arrows.
He's saying, when he took out five arrows, Draupadi was taken to take back the five arrows.
Oh, I thought it was Arjuna. I think it's Arjuna.
Arjuna.
I think it's Arjuna, not Draupadi. But that's a very good story. I'm pretty sure it's Arjuna. Because Krishna tells Arjuna, go and ask, because the arrows were with
Duryodhan.
And so Arjuna said to Duryodhan, you know, you owe me a favor. And he said, okay, whatever you want. He said, give me the five arrows. But I was thinking also when you were talking about Draupadi with her magic pot. And Krishna just took one little piece of vegetable or rice or something.
Krishna ek sabji ka pata liya tha.
And then Durvasa and all his thousands of disciples, they were like, oh, I've already eaten. I mean, who would think of such a solution? You know? So all of a sudden you have 60,000 guests. I mean, if I was God, I would just create enough food. That's not so clever. It's not so interesting. I just say, okay, let me magically create enough food. But Krishna is so clever, he just eats a little bit of sabji. Any other stories of Krishna's intelligence?
Oh, very
nice. Hiranyakashipu thought he was so clever. Not inside, not outside. Okay, doorway. Not the land, the sky, the sea. Okay, lap. Nothing dead or alive. Fingernails. No weapon. Fingernails. Not daytime or night. Twilight. Not a human or an animal. Mixed human animal. Very clever.
Any other examples?
कोई और उदाहरण कह सकते हैं?
When Krishna was convincing his father.
कृष्ण ने नंद बाबा को तैयार किया गोवर्धन की पूजा करने के लिए और इंद्र की पूजा करने के लिए.
And he bewildered his father.
और उन्होंने अपने पिता को भ्रमित कर दिया.
So his father ended up worshiping Govardhan.
और अंततः नंद बाबा ने गोवर्धन की पूजा.
I was also thinking of the killing of Kalyavana.
और कालयवन का वध.
So that's a very funny story. You know, Kalyavana was very tired. Muchukunda was very tired. And so he said, I'm going to sleep and whoever wakes me up, I will burn them to ashes. Have you ever felt that tired? So this Kalyavana was following Krishna.
तो कालियावन कृष्ण के पीछे चल रहे हैं.
And Krishna walks into this cave.
और कृष्ण उस गुफा में घुस गए.
And then he like kind of stands against the cave.
और वो गुफा के सामने खड़े हो गए.
And Kalyavana thought the sleeping man was Krishna.
और कालियावन ने सोचा कि ये जो सोता हुआ व्यक्ति ही कृष्ण है.
So he wakes him up.
और उसने उसको उठा
दिया. That was the end of him.
और वो अंत हो गया उसका.
And then Muchukunda got to see Krishna.
और मुचुकुंद ने कृष्ण का दर्शन भी किया.
You know, there's another similar story.
क्या जानते हैं ऐसी एक और
कथा. With Vrikasura.
Vrikasura के साथ.
So Lord Shiva had given, said to Vrikasura, I will give you any benediction.
और भगवान शिव ने Vrikasura को कहा था मैं कोई भी आशीर्वाद तुम्हें दूंगा.
And Vrikasura said, I want that anybody whose head I touch with my hand, their head will crack and they will die.
और Vrikasura ने कहा था कि मैं जिसका
So Lord Shiva was like, oh, this is not good, but I already promised.
और शिव जी ने कहा ये तो अच्छा नहीं है लेकिन मैंने तो आश्वासन दे दिया.
So okay, you can have this.
तो फिर ठीक है तुम्हें सकता
है. Then Vrikasura goes immediately to touch Lord Shiva's head.
और Vrikasura तुरंत भागते हुए शिव जी का ही सर छूने लगे.
This is a demon.
इसे असर क्या है.
You give them something nice.
उन्हें अच्छा दे दो.
Or you give them something. And they use it against you.
और वो तुम्हारे विरोध में उपयोग करेंगे.
So Lord Shiva was running all over the universe.
और शिव जी तो पूरे ब्रह्मांड में बसते भाग रहे हैं.
And he went to the Vaikuntha planet in this universe.
और वो वैकुंठ में भी चले गए.
So Vrikasura also went there.
और Vrikasura भी उनके पीछे गए.
And then the Lord came out like a little brahmachari boy.
और भगवान ने ब्रह्मचारी बन कर आ गए.
Oh, what are you doing here?
और उन्होंने कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो.
You must be very tired.
तुम थके हुए लगते हो.
You know, you have to rest your body.
तुम्हें जरूर आराम करना चाहिए.
The body is so important.
और शरीर तो इतना महत्वपूर्ण है.
And you must be the son of Shakuni.
और लगता है तुम शकुनी के पुत्र हो.
And he's thinking, oh, this brahmachari knows my father.
और उन्हें लगा अरे ये तो मेरे पिता को जानता है.
I can trust him.
मैं इस पर विश्वास कर सकता हूँ.
And he said, why are you here?
और उन्होंने पूछा आप क्यों हो यहाँ पे.
He said, well, Shiva gave me this benediction.
और उन्होंने कहा शिव ने मुझे आशीर्वाद दिया था.
And the Lord said, you know, you can't trust Shiva.
और भगवान ने कहा तुम शिव पे विश्वास नहीं करते.
He's always associating with ghosts and hobgoblins. I think you should test this benediction. And then if it's a false benediction, you can kill Shiva. That doesn't make any sense. But the demon was like... Okay, and Lord Vishnu says, why don't you test the benediction on your own head?
और विष्णु भगवान ने कहा अपने सर पे हाथ लगा कर देखो. और जैसे लगाया वो पड़ गया.
So this is also a very wonderful opulence in life.
और ये भी बड़ा अद्भुत ऐश्वर्य है जीवन में.
If we can have wisdom and intelligence.
हमारे पास अगर बुद्धि हो.
To understand Krishna, to understand the values of life.
कृष्ण को समझने के लिए और जीवन के मूल्यों को समझने के लिए.
So another one of Krishna's opulences is yasha or fame.
एक और कृष्ण का गुण यश है.
Now yash in the Bhagavatam is the son of kirti and dharma.
भागवतम में जो यश है वो कीर्ति और धर्म का पुत्र है.
So kirti means just people are talking about you.
और कीर्ति का मतलब है लोग बात कर रहे हैं.
But yash means they're talking about you because you've done something good.
और यश का मतलब वो आपके बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि आपने कुछ अच्छा किया है.
They're praising you because you are worthy of praise.
वो आपकी प्रशंसा कर रहे हैं क्योंकि आप प्रशंसा के योग्य पात्र हैं.
So of course Krishna is the most famous.
क्योंकि कृष्ण तो बहुत प्रसिद्ध हैं.
Because everybody knows about God.
क्योंकि हर कोई भगवान के बारे में जानता है.
You know, you have some famous Bollywood star.
जैसे आपके कई प्रसिद्ध कलाकार हैं.
But I don't know any names of Bollywood stars.
मैं तो हिंदी सिनेमा के लोगों को नहीं जानती.
And many people in the world they don't know.
और कई लोग कहते हैं वो नहीं जानते.
So even if you're very famous,
अगर आप बहुत प्रसिद्ध भी हो,
somebody will not know about you.
काफी लोगों को भी नहीं जानते.
But everybody knows about God.
लेकिन सब कोई भगवान को जानते.
Even the atheists know about God.
नास्तिक भी जानते.
So who can be more famous?
और इनसे ज्यादा प्रसिद्ध कौन हो सकता है?
And then Krishna also has, oh, that's also a nice opulence to have.
और कृष्ण एक और गुण रखते हैं.
Because if we have fame due to righteousness,
अगर हमारे पास यश हो,
that means that we have a community.
हमारे पास समाज होगा.
We have people who deal with us nicely.
लोग होंगे जो हमसे अच्छे व्यवहार करेंगे.
Then the next opulence we're going to look at is that of renunciation.
और एक और ऐश्वर्य देखेंगे जो भगवान का वैराग्य है.
This is a very interesting form of wealth.
ये तो बहुत ही रुचिकर संपत्ति का रूप है.
It is actually the most powerful of all the forms of wealth.
सबसे ज्यादा शक्तिशाली.
Because nobody else can take it away.
ये कोई छीन नहीं सकता.
People can take away your beauty.
लोग सुंदरता छीन सकते हैं.
They can take away your knowledge.
ज्ञान छीन सकते हैं.
Your fame.
आपका यश छीन सकते हैं.
You can lose your strength, your health.
आपकी शक्ति ले सकते हैं.
But your detachment is something you have in yourself.
आपका वैराग्य कोई नहीं छीन सकता.
And actually, Krishna gives his devotees detachment from the world.
और जो कृष्ण अपने भक्त को संसार से वैराग्य करते हैं.
So on Wednesday morning in Noida, we're going to be giving a class about this detachment.
बुधवार को नोएडा में हम ये कक्षा देंगे.
What is the value of detachment?
वैराग्य का मूल्य क्या है?
How do we develop it?
इसको कैसे विकसित करते हैं?
What is its relationship with bhakti?
इसका भक्ति से संबंध क्या है?
You know how Krishna gives us detachment from the world?
आप जानते हैं कृष्ण वैराग्य देते हैं संसार से?
Because he's so much nicer.
So much
nicer.
वो बहुत अच्छे हैं.
He's so much more wonderful.
और वो बहुत अद्भुत हैं.
That the pleasures of the world become like nothing.
इस संसार के सुख कुछ भी नहीं.
Oh, therefore Rupa Goswami gives a warning.
इसलिए रूप गोस्वामी तो चेतावनी देते हैं.
Don't go see Krishna.
कृष्ण को देखने मत जाना.
Don't go see that flute player on the bank of the Yamuna in the moonlight.
उस बांसुरी वाले को चंद्रमा की चांदनी में यमुना नदी में मत देखना.
The other day, I was in another country.
मैं एक दूसरे देश में था.
And the temple president said, "There's a family that wants to meet with you."
और मंदिर के अध्यक्ष ने कहा एक परिवार मुझसे मिलना चाहता है.
So I thought family meant husband wife.
तो मैंने सोचा कि पति पत्नी होंगे.
It was husband, wife, children, brother, sister, brother-in-law, sister-in-law, aunties, uncles, whole family.
लेकिन वो तो पूरा का पूरा परिवार निकला जिसमें पति पत्नी बच्चे और बाकी सारे रिश्तेदार शामिल थे.
So first they start talking philosophy.
उन्होंने पहले तो उससे दर्शन की बात की.
Does Krishna consciousness involve renouncing the world?
क्या कृष्ण भावना में इतने वैराग्य पर लेना पड़ता है?
And they were talking just philosophically.
वो काफी दर्शन की बात कर रहे थे.
And then the brother-in-law said, "Actually, we have come to you with a very specific question."
लेकिन उनके सामने ने बोला हम तो एक बड़ा विशेष प्रश्न लेकर आए आपके पास.
Then my brother-in-law has started chanting Hare Krishna.
और ये मेरे जो संबंधी हरे कृष्ण का जप कर रहे हैं.
And now he wants to give up the world.
और वो इस विश्व को छोड़ना चाहते हैं.
So they were very upset.
वो सब बड़े नाराज थे.
And this man was already in his 50s.
और ये व्यक्ति जो जब करता था 50 वर्ष का था.
Children were grown.
और उसके बच्चे भी बड़े थे.
And he said, "I've already made enough money." Very wealthy man.
और वो बड़ा धनी था. उसने बोला मैंने पैसा कमा लिया है.
He said, "I don't need to work."
मुझे काम करने की जरूरत नहीं.
All of you will have enough money for the rest of your lives.
और आप सबके पास जीवन जीने के लिए सब है पर्याप्त मात्रा में.
He said, "Why can't I retire?"
और मैं क्यों नहीं छोड़ सकता संसार?
I want to go to Vrindavan.
मैं वृंदावन जाना चाहता
हूँ. I want to go to Mayapur.
मायापुर जाना चाहता
हूँ. And the wife is crying.
और पत्नी रो रही है.
He says, "You can come with me."
तो उसके साथ मेरे साथ आ जाओ.
The children are crying.
बच्चे रो रहे हैं.
He said, "You are already grown up."
और उन्होंने कहा, तुम कितने बड़े हो गए हो.
You've already moved out of the house.
और आप घर से बाहर भी चले गए हो.
And the aunties and the uncles, everybody was crying.
और सब के सब रो रहे हैं.
Anyway, at the end they weren't crying after we talked for a while. But after they left, I remember this verse of Rupa Goswami. Don't go see Govinda. It's very dangerous. As soon as you see him, everything else in the world becomes like nothing. And even if all your family is crying,
और जब पूरा परिवार रो रहा हो,
still you're going to go to Krishna.
आप फिर भी कृष्ण को जाएंगे.
Therefore, people are very afraid of religion.
इसीलिए धर्म से लोग डरते हैं.
In every religion, even religious people,
धार्मिक लोग भी,
they say don't be too religious.
वो कहते हैं कि कुछ ज्यादा धार्मिक मत हो जाना.
You can pray a little bit every day.
थोड़ी बहुत करते रहो.
Few minutes.
कुछ मिनट.
Maybe once a week.
एक बार सप्ताह में करना.
Keep it balanced.
थोड़ा संतुलित रहो.
So Krishna gives his devotees detachment from the world.
कृष्ण अपने भक्तों को इस संसार से विराग देते हैं.
Krishna is also detached in that he loves everyone, even the demons.
कृष्ण अभी वैरागी रखते हैं और वो असुरों से भी.
This is one of the big questions in the Bhagavatam.
भागवतम में ये बड़ा प्रश्न है.
Is Krishna really neutral?
क्या कृष्ण संभव है?
And that's why a lot of the stories, especially of Nrsingadev, is being told.
इसीलिए भगवान नरसिंहदेव की कथा बताई गई थी.
So can we think of some examples of Krishna's renunciation?
क्या कोई आपको उदाहरण याद आता है कृष्ण के वैराग्य का?
Oh, he acted as Arjuna's servant.
तो कृष्ण अर्जुन के सेवक बनके साथी थे. कृष्ण left his parents.
Krishna left, yes, he left Vrindavan. He left Ras Lila. He left the battle with Jarasandar. When Satrajit gave him the Shamantaka jewel, he didn't take it. I mean, I would take it. Wouldn't you take it?
Huh?
You get what, like 190 pounds of gold every day? We would build, then we could build the whole TOVP very easily. But Krishna didn't take.
Krishna didn't.
And Lord Chaitanya taking sannyas at a young age.
चैतन्य महाप्रभु ने युवा अवस्था में संन्यास लिया.
Lord Ramachandra, when he was exiled, he said, "Yes, I will be exiled."
श्री रामचंद्र वनवास थे.
And I guess the saddest story.
सबसे दुख देने वाली.
Is Ramachandra vanishing Sita.
श्री रामचंद्र सीता का त्याग किया.
So detachment is also a very wonderful opulence to have in our lives.
वैराग्य भी एक बहुत अच्छा वैभव है हमारे जीवन का.
It gives us the ability to be happy and peaceful in any situation.
और किसी भी परिस्थिति में हमें खुश और शांत रहने का योग्यता देता है.
Now Krishna also has the opulence of Aishwarya.
कृष्ण के पास एक और वैभव ऐश्वर्य का है.
Which has to do with the word Ishvara or the controller.
और जो कि ईश्वर शब्द से या नियंत्रक शब्द से संबंधित है.
And it also has to do with money and jewels and things that we consider to be richness.
और इसका संबंध भौतिक संपत्ति से भी है.
So this is because Krishna owns everything.
क्योंकि कृष्ण सबके स्वामी हैं.
He even owns our body.
हमारे शरीर के भी स्वामी हैं.
Our mind.
हमारे मन के,
all of our possessions,
हमारी सारी संपत्ति के,
our family,
हमारे परिवार के,
our home,
हमारे घर के,
and in one sense, beyond owning them, he is them.
और ये दृष्टि से वो ही है सब कुछ.
He actually is everything.
और वो ही एक दृष्टि से सब कुछ.
Now Krishna has many pastimes where he demonstrates that he's very wealthy.
कृष्ण की कई लीलाएं जहाँ पर वो दिखाते हैं वो बड़े संपन्न हैं.
Like every day in Dwarka, he's giving so much charity.
जैसे द्वारका में वो दान देते हैं वो.
How he took the universe from Bali Maharaj.
कैसे उन्होंने बलि महाराज से ब्रह्मांड को ले लिया.
So we've looked at Krishna's six opulences.
हमने कृष्ण के छह ऐश्वर्यों को देखा.
We're now going to look briefly at Krishna's personality.
अब विष्णु के व्यक्तित्व को संक्षिप्त रूप से चर्चा करेंगे.
So what do we mean by personality?
व्यक्तित्व के बारे में आपका क्या अर्थ है?
That means what we like or what we don't like.
इसका अर्थ है हमें क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है.
Some people like bananas and some people don't like bananas.
कई लोगों के लिए पसंद है कई को नहीं पसंद है.
So I was just at one devotee school.
मैं एक भक्त के स्कूल में गई.
And at the end of my class, they gave me some sweets to pass out to the children.
और कक्षा के अंत में कुछ मिठाई बांटने के लिए मुझे दी गई.
So I'm giving them out, and one boy is saying, "No, thank you."
लड़के ने मना कर दिया मुझे कि नहीं चाहिए.
Then there was another kind of sweet.
और फिर दूसरे प्रकार की मिठाई
थी. And again, the same boy said, "No, thank you."
और फिर उसी बच्चे ने कहा नहीं चाहिए.
I said, "Two kinds of sweets. You don't want any sweets?"
तो मैंने कहा ये दो प्रकार की है कोई भी नहीं चाहिए.
He says, I only like certain food. I'm very picky.
तो उसने कहा मैं बड़ा चुनाव करके लेता हूँ.
So this is personality. What do I like? What do I not like?
ये व्यक्तित्व है मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद.
Some people like green. Some people like purple.
कई लोगों को हरा पसंद है कई को जामुनी पसंद है.
And our opinions about things.
हमारी जो राय है वस्तुओं के बारे में.
And usually with our personality it means we're very good at some things and not so good at other things.
और इसका अर्थ ये भी है कि हम कुछ चीजों में अच्छे होंगे कुछ में नहीं भी अच्छे होंगे.
Right? Some people are very fast at getting things done.
कुछ लोग बड़े तीव्र होंगे कुछ करने में.
But they don't get into the details.
वो लेकिन सूक्ष्मता में नहीं जाते.
And other people are very careful with the details.
और कुछ लोग बड़े ध्यान से सूक्ष्मता को देखते हैं.
But they're going to be slower to complete the job.
पर वो बहुत धीरे धीरे करते हैं.
So whatever strength we have,
और जो भी हमारा दक्षता है,
also is a weakness.
वो एक कमजोरी भी अपने आप में.
So Krishna is not like that.
कृष्ण तो ऐसा नहीं.
And Rupa Goswami describes four aspects of Krishna's personality.
और रूप गोस्वामी कृष्ण के चार व्यक्तित्व की चर्चा करते हैं.
Which we'll look at very briefly.
जिसको संक्षिप्त रूप से देखेंगे.
So the first is called Dhirodatta.
और पहला धीरोदाता है.
Dhirodatta is a supreme gentleman.
और इसका मतलब है कृष्ण परम सभ्य है.
No, maybe not. The supreme hero.
वो परम नायक है.
Like Lord Ramachandra.
जैसे रामचंद्र.
Very beautiful.
बहुत सुंदर.
Very gentle and forgiving.
सभ्य और क्षमाशील.
Very merciful.
कृपालु.
And always rescues everyone.
और सबको संरक्षण देते हैं.
Like when Krishna lifted Govardhan Hill.
जैसे कृष्ण गोवर्धन उठाते हैं.
So that is Krishna as the supreme hero.
ये है कृष्ण परम नायक.
Then we have Dhiralalita.
और फिर दूसरा बोल रहे हैं धीरललिता.
So this is the party boy.
और ये है चपलता.
Very funny.
और बड़ा मजाकिया.
Very joking.
और साथ में.
Whatever his girlfriend likes, he will do.
जो भी उनकी सखियां कहती थी वो कर देते हैं.
So this we see with Krishna and the gopis, Krishna with his queens.
कृष्ण अपनी रानियों के साथ गोपियों के साथ.
Then we have Dhiraprasanta.
और फिर धीर प्रसन्नता.
This is really the gentleman.
और ये तो बड़ा सभ्य होना है.
Very considerate.
और बहुत सोचने वाले.
A very obliging, very peaceful.
लोगों का पक्ष लेने वाले शांत.
This is what Krishna showed when he drove Arjuna's chariot.
और ये कृष्ण ने प्रदर्शन किया रथ चला के अर्जुन का.
Or when he washed everyone's feet at the Rajasuya Yagya.
और राजसूय यज्ञ में सबके चरण धोए.
But then there's Dhirodatta.
और फिर आता है धीरदाता.
So this is like the bad boy.
और ये है बुरा लड़का.
This is the tough guy.
और ये है कठोर.
This is when Krishna is insulting with the demons.
और ये है जब कृष्ण अपमानित होते हैं असुरों से.
Fighting with them.
उनसे युद्ध करना.
Kind of like the way Bhima is.
जैसे भीमा.
So Krishna is the greatest hero.
Krishna param nayak hai.
He's the greatest fun person.
Aur wo sabse anand dene wale hain.
The greatest gentleman.
Aur sabse bade sabhi hain.
And the greatest tough guy.
Aur sabse kathor bhi hain.
All in one person.
Sab ek hi mein.
So this was just a little look at Krishna's qualities and personality.
Abhi humne thoda sa dekha Krishna ke gun aur Krishna ke vyaktitva ko.
We could be speaking for many, many months.
Hum kai mahine se baat kar sakte hain.
But I hope this helps us to know Krishna better.
Aur ye humein sahayata karta hai Krishna ko
jaanne mein. And to be attached to him.
Unse aasakt ho.
So I think we have some books here.
Kuch kitabein hain hamare.